آگے سبق دیکھیے بھائی کتاب پر. قال المصنف رحمه الله في الإيزاح شرح المفصل الضمير فيما دل على معنى في نفسه يرجع إلى معنى أي ما دل على معنى باعتباره في نفسه وبالنظر إليه في نفسه لا باعتبار أمر خارج عنه كقولك الدار في نفسها حكمها كذا أي لا باعتبار أمر خارج عنها. گزشتہ سبق میں اسم کی تعریف ہم نے شروع کی تھی. صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا الاسم ما دل على معنى فی نفسه کہ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کلمہ کی ذات میں ہوتا ہے. اور یہ بات میں پہلے بیان کر چکا کہ معنی کا کلمے کی ذات میں ہونا, اسم ایسا کلمہ ہے کہ اس کی ذات میں معنی ہوتا ہے. بھائی کلمے کی ذات میں معنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ خود اس پر دلالت کرتا ہے, اس پر دلالت کرنے کے لیے وہ کسی اور کلمے کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں. یعنی وہ معنی اس لفظ سے مستقلاً مفہوم ہو رہا ہے, یعنی وہ معنی مستقل بالمفہوم ہے, وہ معنی مستقل بالمفہوم ہے اس لفظ سے, یعنی مستقلاً اس سے سمجھ میں آ رہا ہے. جیسے میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی کہ لفظ ابتدا کا معنی بھی شروع کرنا اور مین کا معنی بھی شروع کرنا. لفظ ابتدا جیسے ہی میں نے کہا آپ فوراً سمجھ گئے کہ اس کا کیا معنی ہے, شروع کرنا. معلوم ہوا لفظ ابتدا سے شروع کرنے کا معنی مستقلاً سمجھ میں آ رہا ہے, یہ کسی اور کلمے کا محتاج نہیں ہے کہ اس معنی پر دلالت کرے. تو ہم یوں کہیں گے کہ یہ جو شروع کرنے کا معنی ہے یہ ابتدا کی ذات میں ہے. کس میں ہے؟ یہ لفظ کلمہ ابتدا کی ذات میں یہ معنی ہے, یعنی تو یہ کسی اور کلمے کا محتاج نہیں اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے, اور وہ معنی اس سے مستقلاً مفہوم ہو رہا ہے. جبکہ دوسری طرف من ہے, من کا معنی بھی شروع کرنا, لیکن من کہیں تو اس سے شروع کرنے کا معنی سمجھ میں نہیں آتا, یعنی مستقلاً اس سے شروع کرنے کا معنی سمجھ میں نہیں آتا. ہاں اس کے ساتھ جب اس کے متعلقات جوڑ دو گے, مثلا سرت من البصرۃ الی الکوفہ, میں چلا بصرہ سے کوفہ تک, اب آپ کو سمجھ میں آیا آپ کہاں سے کہاں تک چلے ہیں, بصرہ سے کوفہ تک. معلوم ہوا آپ کے چلنے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے, بصرہ سے, اور انتہا کہاں پر ہو رہی ہے, کوفہ پر. تو بصرہ سے جو چلنے کی ابتدا ہو رہی ہے اس پر کس نے دلالت کی؟ من نے. اور کوفہ پر چلنے کی انتہا ہو رہی ہے اس پر کس نے دلالت کی؟ الا نے. تو دیکھا یہاں من اور الا حروف ہیں اور ان کا معنی مستقل بالمفہوم نہیں, ان کے ساتھ جب دوسرے کلمے جوڑ دو گے پھر ان کا معنی سمجھ میں آئے گا. تو جبکہ ابتدا لفظ اکیلا بولو فوراً اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے, جبکہ من میں ایسا نہیں ہے. اس کے بعد الاسم ما دل ای کلمت دلت, شارح جامی نے ما دل کی تفسیر کی ای کلمت دلت, بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ما موصوفہ ہے, ما موصولہ نہیں ہے. میں نے بتایا اس ما کو موصولہ بھی بنا سکتے ہو, کسی ضمیر فصل کی ضرورت نہیں, اور اس ما کو موصوفہ بھی بنا سکتے ہیں. شارح جامی نے اس کو ما موصوفہ بنانا پسند کیا تاکہ خبر کی اصل پر عمل ہو جائے. خبر کے اندر اصل کیا ہے؟ نکرہ ہونی چاہیے. تو اس ماں کو جب موصوفہ بنائیں گے تو خبر کی اصل پر عمل ہو جائے گا, کیونکہ ماں موصوفہ بھی نکرہ ہوتا ہے. چنانچہ ای کلمت دلت نکرہ کے ساتھ اس کی تفسیر کی بھائی. اور نیز ما دلہ فعل کے اندر ہوا ضمیر تھی جو ماں کو راجے تھی, اور ماں لفظ مذکر ہے تو دلہ فعل بھی مذکر لائے, کیونکہ اس کے اندر ہوا ضمیر ہمیں چاہیے تھی جو ماں کی طرف لوٹے. اور جب ماں کی تفسیر کلمہ کے ساتھ کر دی تو کلمہ کا لفظ تو مؤنث ہے, اس کے ساتھ تو تا مربوطہ جڑی ہوئی ہے, گول تا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو اس کے لیے آگے فعل جو نکالا وہ دلہ نہیں نکالا بلکہ دلت نکالا. निकाला ताकि हिया जमीर हमें मिल जाए, क्योंकि हिया जमीर कलिमा की तरफ लौटाएंगे भाई। और आगे मानन का इनिन फी नफसी ही, माना के बाद का इनिन का लफ्ज निकाल कर बतला दिया कि ये फी नफसी ही जो है ये माना की सिफत है। नकेरा के बाद जार मजरूर आए तो वो उसके लिए सिफत बनेगा, और वो मैंने आपको तरीका भी बतलाया था कि जार मजरूर आठ चीजों में से किसी एक से मुताल्लिक होता है। वो आठ चीजें कौन कौन सी हैं, वो हर वक्त आपके जहन में होनी चाहिए। कौन सी? फेल है, मसदर, इसमें फाइल, इसमें मफूल, सिफत मुशब्बा, इसमें तफजील, मुबालगे के सीगे और इसमें फेल। फिर दोहराओ, वो आठ चीजें कौन सी हैं? फेल है, मसदर है, इसमें फाइल, इसमें मफूल, सिफत मुशब्बा, इसमें तफजील, मुबालगे के सीगे और इसमें फेल है। तो इन आठ में से कोई कलाम में आए या एक आए या ज्यादा आए तो हर एक से बारी बारी जोड़कर उसका तर्जमा करें। जिसके साथ तर्जमा ठीक हो जाए या जिसके साथ बेहतर हो जाए उसके साथ उसको जोड़ दें। तो यहां पर मानन नकेरा है और नकेरा के बाद जार मजरूर फी नफसी ही आया तो इसको माना के लिए इन्होंने सिफत बना दिया भाई। और सिफत बराह रास्त नहीं बनेगा बल्कि मुतअल्लक भी निकालना पड़ेगा। तो इसम जो है ऐसा कलिमा है जो दलालत करता है अला मानन, ऐसे माना पर, का इनिन फी नफसी ही, ऐ साबितिन फी नफसी ही, जो उसकी जात में साबित है, यानी उस कलिमा की जात में। आगे शारह जामी ने आपको बतलाया था ऐ फी नफसी मा दल्ला, कि नफसी ही की हा जमीर किसको राजे है? मा दल्ला को। ऐ फी नफसी मा दल्ला, देखो नफसी ही की हाज अमीर की जगह क्या ले आए? मा दल्ला ले आए, मा दल्ला, और उससे क्या मुराद था? कलीमा। इसीलिए आगे कहा या अनिल कलीमा था कि फी नफसी ही की जमीर मा दल्ला को राजे है, या अनिल कलीमा था, यानी के कलीमा जो है। फिर मैंने यहां पर आपको एक जाब्ता बतलाया था। जाब्ता यह कि जब जमीर किसी लफ्ज की तरफ लौटे और लफ्ज और माना दोनों आपस में तस्कीर और तानीस में मुख्तलिफ हों, मसलन लफ्ज है मुजक्कर और माना है मुअन्नस, जैसे यहां लफ्ज मां है, यह लफ्ज तो मुजक्कर है लेकिन यहां इसका मिसदाक क्या है? कलिमा। तो माना इसका गोया कलिमा हुआ और कलिमा मुअन्नस है। तो ऐसे मौके पर याद रखो, दोनों में से जिसकी भी आयत रियायत रखना चाहे रख सकते हैं, आप चाहें तो लफ्ज की रियायत रखें और लफ्ज मुजक्कर है तो मुजक्कर की जमीर लौटा दें, और आप चाहें तो माना की रियायत रखें और माना तो मुअन्नस है तो मुअन्नस की जमीर लौटा दें। अब यहां पर मां लफ्ज को देखें तो मुजक्कर है और उसका माना यानी कलिमा देखें तो वो मुअन्नस है। तो फी नफसी ही की जमीर में किसका लिहाज रखा? इसमें मौसूल के लफ्ज का लिहाज रखा, माना का लिहाज नहीं किया। तो यही इन्होंने आपको बतलाया था कि फतस्कीर उस जमीरी बिना अन आला लफ्ज मौसूली, कि जमीर को मुजक्कर लाना यह लफ्ज मौसूल की वजह से है। इस पर फिर इश्काल हुआ था कि यह मां तो आपने मौसूफा बनाया है, फिर लफ्ज मौसूल कहने का क्या मतलब? आपको लफ्ज मौसूफ कहना चाहिए था, लफ्ज के जमीर मुजक्कर लाए हैं मां मौसूफा की वजह से, उसके लफ्ज की वजह से, लेकिन साहिब जामी ने क्या फरमाया? लफ्ज मौसूल। भाई आपने तो इसमें मौसूल इसको बनाया ही नहीं। तो उसका जवाब बाज शारहीन ने, बाज मुहशी हजरात ने यह दिया कि दरअसल शारह जामी इस बात की तरफ इशारा करना चाहते हैं कि इस मां को हमने तो मौसूफा बनाया लेकिन इसको मां मौसूला भी बना सकते हैं। तो दोनों एहतमाल हैं इसके अंदर, बल्कि ये शारहीन फरमाते हैं कि लफ्ज मौसूल के जरिए भी इशारा कर दिया कि मां दल्ला को मौसूला बनाना भी सही, और नीज फी नफसी ही का तर्जमा शारह जामी ने क्या किया? ऐ फी नफसी मा दल्ला या अनिल कलिमा था। देखो अल कलिमा मारिफा निकाला और मारिफा वो तो इसमें मौसूल होता है, मौसूफ मां मौसूफा नहीं होता। तो ये मारिफा अल कलिमा जो लेकर आए तफसीर के अंदर, इसके जरिए भी इशारा कर दिया कि ये मां मौसूला भी हो सकता है। और नीज फी नफसी ही का क्या तर्जमा किया? आई फी नफसी मा दल्ला, मां के साथ दल्ला फेल भी लेकर आए, इसमें भी इसी तरफ इशारा है कि यह मां मौसूला भी हो सकता है, और मौसूल तो बगैर सिले के नहीं आता। तो मां दल्ला कहा, मां के साथ सिला भी जिक्र किया शारह जामी ने शरा करते हुए। जबकि बाद शारहीन ने और तकरीर की, बाज मुहशी हजरात ने, वो फरमाते हैं कि शारह जामी ने मां को मौसूफा नहीं बनाया बल्कि मां को मौसूला ही बनाया है। उन पर इश्काल होता है, भाई मौसूला कैसे? उन्होंने तो कलिमा तुन दल्लत नकेरा कलिमा लेकर आए और उससे तो पता चल रहा है कि ये मां मौसूफा है, मां मौसूला नहीं। कहते हैं नहीं, शारह जामी ने भी इस मां को मौसूला ही बनाया है, अलबत्ता ये जो इसमें मौसूल है ये आहदे खारजी के लिए नहीं है बल्कि आहदे जहनी के लिए है और आहदे जहनी नकेरा के हुक्म में होता है। तो इस अलिस्मु मादल्ला, इसम वो कलिमा है जो दलालत करे, इससे कोई खास और मुतायन कलिमा मुराद नहीं है बल्कि हर ऐसा कलिमा जो अपने माना पर खुद दलालत करे और उसके अंदर तीन जमानों में से कोई जमाना ना हो उसको क्या कहेंगे? इसम कहेंगे। तो मालूम हुआ यहां मां जो है वो अहदे खारजी के लिए नहीं है बल्कि अहदे जहनी के लिए है और वह किस माना में होता है? नकेरा के माना में होता है, इसीलिए कलिमतुन दल्लत नकेरा के साथ उसका तर्जमा किया। अब आइए आज के सबक पर भाई। قال المصنف في الإيضاح شرح المفصل الضمير في ما دل على معنى في نفسه يرجع إلى معنى। याद रखिए मुसन्निफ यानी अल्लामा इब्ने हाजिब रहिमहुल्लाह, इन मैंने आपको बतलाया था इन्होंने अपनी ये किताब काफिया जो है ये अल्लामा जमखशरी की किताब मुफस्सल से अखज की है भाई। इसी तरह अल्लामा इब्ने हाजिब ने इस मुफस्सल की एक अलग बाकायदा शरा भी लिखी है और उसका नाम है ईजाह भाई। अल्लामा इब्ने हाजिब ने मुफस्सल की जो एक शरा लिखी है उसका नाम क्या है? ईजाह भाई, ईजाहुल मुफस्सल, मुफस्सल की वजाहत भाई। तो अल्लामा जामी यहां पर ईजाह जो शरा है मुफस्सल की वहां से अल्लामा इब्ने हाजिब की एक इबारत यहां नकल कर रहे हैं और आपको बतलाएंगे कि हमने तो फी नफ्सी ही की जमीर किसको लौटाई? मा दल्ला को, और मा दल्ला से क्या मुराद है? कलिमा। यानी आसान लफ्जों में यूं कहो कि हमने तो फी नफ्सी ही की हा जमीर किसको लौटा दी? कलिमा को। लेकिन अल्लामा इब्ने हाजिब ने जो शरा की है मुफस्सल की उसके अंदर उन्होंने इस फी नफ्सी ही की जमीर को माना की तरफ लौटाया है और इस सूरत में फिर एक इश्काल भी होता है, उस इश्काल का भी फिर वो जवाब देते हैं ईजाह के अंदर भाई। तो हासिल ये कि अल्लामा जामी जो है ये काल अल मुसन्निफ फिल ईजाही ये इबारत जो है इन्होंने साहिब काफिया की नकल की उनकी किताब ईजाह से और बतला रहे हैं कि हमने तो फी नफ्सी ही की जमीर मादल्ला को राजे की और मादल्ला से क्या मुराद है? कलिमा। तो गोया आसान लफ्जों में यूं कहो कि हमने तो फी नफ्सी ही की जमीर कलिमा को राजे की, लेकिन साहिब काफिया ने मुफस्सल की शरा ईजाह के अंदर इस जमीर को माना की तरफ राजे किया है, जमीर को। चुनांचे ईजाह से साहिब काफिया की उस इबारत को भी यहां नकल कर रहे हैं और माना की तरफ जमीर को राजे करें तो उस पर एक इश्काल भी होता है, उस इश्काल का भी साहिब काफिया ने जवाब दिया है। अब वो जिक्र करने लगे हैं, क्या बतलाएंगे? पहले ईजाह की इस इबारत में साहिब काफिया की यह जमीर किसको लौट रही है? माना को लौट रही है। और फिर जब माना की तरफ लौटाएंगे तो एक एतराज वारिद होगा, उस एतराज का भी वो जवाब देंगे, वो भी उन्होंने जिक्र किया है। तो अब आगे जो है ये ईजाह की इबारत आ रही है, कहते हैं काल अल मुसन्निफ फिल ईजाह शरह मुफस्सली, कहते हैं मुसन्निफ यानी साहिब काफिया ने ईजाह शरह मुफस्सल में फरमाया है। अब ये आगे ईजाह की इबारत शुरू हो रही है, अज़मीर फी मा दल्ला अला मानन फी नफ्सी ही, कि वो जो जमीर है इस इबारत में कौन सी इबारत? मा दल्ला अला मानन फी नफ्सी ही, मा दल्ला अला मानन फी नफ्सी ही के अंदर जो जमीर है ये साहिब काफिया फरमा रहे हैं ईजाह के अंदर, कहते हैं यरजिउ इला मानन, ये किस तरफ लौट रही है? माना की तरफ लौट रही है। तो साहिब जामी ने तो फी नफ्सी ही की जमीर को किसकी तरफ लौटाया? कलिमा की तरफ। और साहिब काफिया ने ईजाह में इस जमीर को किसकी तरफ लौटाया है? माना की तरफ लौटाया है। ऐ मा दल्ला, ये वो अब इश्काल का जवाब देने लगे हैं साहिब काफिया। ये सारी ईजाह की इबारत चल रही है तो आगे दो तीन सत्रों तक ये ईजाह की इबारत है। एतराज यह होता है, आपने क्या तारीफ की? अलिस्मु मा दल्ला अला मानन फी नफ्सी ही, और फी नफसी ही कि हाज अमीर साहिब काफिया ने ईजाह में बतलाया है, किसकी तरफ लौट रही है, माना की तरफ, तो माना हो जाएगा यूं कि इसम वो कलिमा है दल्ला अला मानन जो दलालत करता है ऐसे माना पर, फी नफसी ही कि वो माना नफ्से माना में है, फी नफसी ही ऐ फी नफसिल कि वो माना नफ्से माना में है यानी माना माना के अंदर है, तो ये तो जरफियत शैली नफसी ही की खराबी लाजिम आई। हालांकि जर्फ और होता है मजरूफ और ज़ैदुन फिद्दारी, फी से मा कबल वाला है मजरूफ और फी का माबाद क्या है जर्फ, जैद घर में है, मालूम हुआ जैद मजरूफ है, जैद घर में है और घर जो है उसके लिए जर्फ के दर्जे में है जिसने जैद का इहाता किया हुआ है। तो यहां पर भी फी नफसी ही कि हा जमीर किसको लौटा दी, माना को, और फी किस लिए आता है, जरफियत के लिए, तो माना फी नफसिल माना, माना किसके अंदर हो गया, नफसे माना के अंदर हो गया यानी माना माना के अंदर हो गया, तो मजरूफ भी माना और जर्फ भी माना, तो ये जरफियत शैली नफसी ही है और ये बातिल है, ये नहीं हो सकता क्योंकि जर्फ और होता है और मजरूफ और होता है। यह खराबी क्यों लाजिम आई, क्योंकि आपने फी नफसी ही कि हाज अमीर किसको लौटाई, माना को लौटाई, इश्काल समझ में आ रहा है। तो कहते हैं साहिब काफिया ने खुद ही भी इसका जवाब भी दिया है कि ऐ मा दल्ला अला मानन बी अतिबार ही फी नफसी ही व बिन नजर इलैही फी नफसी ही। साहिब काफिया ने इस एतराज का जवाब यह दिया कि यहां फी जरफियत के लिए नहीं है, मानन फी नफसी ही में जो फी आया ये फी जरफियत के लिए नहीं है बल्कि ये एतबार के माना में है, यानी यहां एतबार का माना मलहूज है, यहां कौन सा माना मलहूज है, एतबार का माना मलहूज है। तो गोया यूं कहा गया, देखिए खुद साहिब काफिया बतला रहे हैं, अमा दल्ला अला मानन बे अतबारी ही फी नफसी ही, दरमियान में क्या लफ्ज ले आए, बे अतबारी ही ले आए, तवज्जो है, फिर देखो अमा दल्ला अला मानन बे अतबारी ही फी नफसी ही व बिन नजर इलैही फी नफसी ही, तो यहां एतबार और नजर का माना मलहूज है। तवज्जो है, इधर देखिए इबारत क्या थी, अला मानन फी नफसी ही, यहां फी किस माना में है, एतबार के माने में, गोया इबारत यूं है अला मानन बे अतबारी ही फी नफसी ही व बिन नजर इलैही फी नफसी ही, तो यहां फी एतबार और नजर के माना में है, एतबार और नजर के माना में है। अब तर्जमा क्या होगा, देखो इबारत पे जरा नजर रखो, अमा दल्ला अला मानन यानी इसम वो कलिमा है जो दलालत करे ऐसे माना पर, बे अतबार ही फी नफसी ही ऐ साबितिन बे अतबार ही फी नफसी ही, बे अतबार के लिए भी मुताल्लक क्या निकाल लिया, साबित। अब सुनो तर्जमा जरा गौर से सुनो, अमा दल्ला अला मानन इसम वो कलिमा है जो दलालत करता है ऐसे माना पर, साबितिन बे अतबार ही फी नफसी ही, तर्जमा आखिर से होगा जो अपनी जात के एतबार से साबित है, जो अपनी तवज्जो है, मानन के बाद हमने क्या निकाल लिया, साबितिन, अब आला मानन साबितिन बे अतबारी ही फी नफसी ही, और तर्जमा आखिर से है ऐसा माना जो अपनी जात के एतबार से साबित है, वह बिन नजर इलैही फी नफसी ही, देखो इस बिन नजरी इलैही का आतफ उसी बे अतबार पर है, अब उस बे अतबारी ही को हटा दो और उसकी जगह बिन नजरी इलैही ले आओ, इबारत यूं बन गई ऐ मा दल्ला अला मानन बिन नजरी इलैही फी नफसी ही, और वो बे अतबार किससे मुतालिक था, साबितिन से, तो यहां पर भी साबितुन निकालेंगे, ऐ मा दल्ला अला मानन साबितिन बिन नजरी इलैही फी नफसी ही, इसम वो कलिमा है जो दलालत करता है ऐसे माना पर, साबितिन बिन नजरी इलैही फी नफसी ही, तर्जमा आखिर से होगा जो अपनी जात की तरफ नजर करते हुए साबित है, जो अपनी जात की तरफ नजर करते हुए साबित है। पूरी इबारत क्या हो गई, अमा दल्ला अला मानन बे अतबारी ही फी नफसी ही व बिन नजरी इलैही फी नफसी, भाई इधर देखिए इब्तिदा का क्या माना, शुरू करना, और मीन का माना भी शुरू करना, लेकिन इब्तिदा का माना अपनी जात के एतबार से साबित है, जैसे ही आप इब्तिदा कहेंगे दूसरे को फौरन शुरू करने का माना समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप मिन कहेंगे तो दूसरे को शुरू करने का माना समझ में नहीं आएगा। तो हम यूं कहेंगे कि जो लफ्ज इब्तिदा है कि इसका जो माना है वो माना अपनी जात के एतबार से ही साबित है, वो माना अपनी जात के एतबार से ही साबित है, किसी अमर खारिज के एतबार से साबित नहीं। तवज्जो नहीं, तवज्जो। हम यूं कहेंगे कि जो लफ्ज इब्तिदा है इसका जो माना है शुरू करना, तो जब लफ्ज इब्तिदा बोलो तो इसका ये जो माना शुरू करना है ये अपनी जात के एतबार से ही साबित है, यानी अपनी जात की तरफ नजर करते हुए ही ये माना साबित है, किसी अमरे खारिज के एतबार से नहीं साबित बल्कि अपनी जात के एतबार से। तवज्जो है, यह माना शुरू लफ्ज इब्तिदा से जो शुरू करने का माना आपको समझ में आ रहा है, यह जो शुरू करने वाला माना है यह अपनी जात के एतबार से साबित है, किसी अमरे खारिज के एतबार से साबित नहीं है। दूसरी तरफ सिर तो मिनल बसरा तिलल कूफा, मैं चला बसरा से लेकर कहां तक, कूफा तक, यहां पर मीन का माना भी शुरू करना है, लेकिन अकेले मीन का माना शुरू करना समझ में आ रहा था नहीं, तो यहां पर भी मीन का माना शुरू करना साबित है लेकिन अपनी जात के एतबार से नहीं बल्कि एक अमरे खारिज के एतबार से, यानी सिरतु और बसरा के एतबार से, अपनी जात के एतबार से यह माना साबित नहीं है बल्कि अकेला मीन को, तो इसका माना साबित है शुरू करना नहीं। हां, सिरतु और बसरा कहें, मैं चला हूं कहां से, बसरा से, अब समझ में आया कि तवज्जो है, देखो ना, सिरतु मीनल बसराती इलल कूफा, सिरतु का माना क्या है, चलना, मैं चला, इस सिरतु का ताल्लुक बसरा से भी है, कूफा से भी है, इस सिरतु का ताल्लुक बसरा से भी है और इसका, यानी दोनों से ताल्लुक है सिरतु का, लेकिन बसरा से ताल्लुक है क्या, शुरू होने का, ये कि सैर बसरा से शुरू हो रही है और इसी सैर का ताल्लुक किससे है, कूफा से भी है, लेकिन कूफा से क्या ताल्लुक है कि उस पर सैर की इंतहा हो रही है, उस पर सैर खत्म हो रही है। तवज्जो है, तो यहां पर शुरू करने का माना साबित तो है, शुरू करने का माना साबित तो है, लेकिन अपनी जात के एतबार से मीन से समझ में आ रहा है या सिरतु और बसरा की वजह से समझ में आ रहा है, सिरतु और बसरा। मालूम हुआ कि इसम और फेल जो है उसका माना अपनी जात के एतबार से साबित होता है, उसका माना अपनी जात के एतबार से साबित होता है, और हर्फ का माना जो है वो अपनी जात के एतबार से साबित नहीं होता बल्कि एक अमरे खारिज के एतबार से साबित होता है, जैसे सिरतु और बसरा, उसके एतबार से मीन का माना साबित है, अगर ये सिरतु और बसरा ना होते तो मीन का माना भी साबित नहीं था। तवज्जो है, हासिल कलाम क्या हुआ, हासिल कलाम यह कि अल्लामा इब्ने हाजिब ने इज़ाह के अंदर इस फी नफ्सी ही के हाजमीर को लौटाया है माना की तरफ, इस पर फिर इश्काल होता है कि इस फिर इस सूरत में तो ज़र्फियतु शैली नफ्सी ही लाजिम आती है, क्योंकि इबारत क्या बन गई, अला मानन फी नफ्सिल माना, के माना है किसकी जात में, माना की जात में, तो ज़र्फ भी माना और मजरूफ भी माना, तो ज़र्फियतु शैली नफ्सी ही लाजिम आया और यह बातिल है। तो उसका जवाब दिया साहिब काफिया ने इज़ाह के अंदर कि यहां पर फी एतबार के माना में है, फी एतबार के माना में है, यानी इसम वो कलिमा है जो दलालत करता है ऐसे माना पर कि वो माना अपनी जात के एतबार से साबित होता है, अपनी जात की तरफ नजर करते हुए ही वो साबित होता है, किसी अमरे खारिज के एतबार से वो साबित नहीं होता, जबकि हर्फ का जो माना है वो एक अमरे खारिज के एतबार से साबित होता है, अपनी जात के एतबार से साबित नहीं होता। बात समझ में आ गई, अयमा दल्ला अला मानन बेअतिबारी ही फी नफसी ही, यानी इसम वो कलिमा है जो दलालत करता है ऐसे माना पर जो अपनी जात के एतबार से साबित होता है, वह भी नजरी इलई ही फी नफसी ही, और अपनी जात की तरफ नजर करते हुए साबित होता है, ला बेअतिबारी अमरिन खारिजिन आनहू, न के अमरे खारिज के एतबार से, इसम का माना अपनी जात के एतबार से साबित होता है, न कि किसी अमरे खारिज के एतबार से, और हर्फ का माना अमरे खारिज के एतबार से साबित होता है। मीन के साथ जब तक सिरतू और बसरा नहीं जिक्र करेंगे, मीन का माना शुरू करना समझ में नहीं आएगा। तो मीन का माना शुरू करना साबित होता है अमरे खारिज यानी उसके मुताल्लकात के एतबार से। तो साहिब काफिया ने इजाह में क्या बतलाया कि यह फी एतबार और नजर के माना में है, एतबार और नजर के माना में है। फिर उसके आगे मजीद तफसील भी बयान कर रहे हैं कि यह जो फी का माना हमने एतबार और नजर के किया, यह हमने अपनी तरफ से नहीं किया, कलाम अरब में इस्तेमाल होता है फी इस माना में। चुनाचे मिसाल देते हैं आगे, कहते हैं कौली का, जैसे कि आपका यह कौल है अदारु फी नफसिहा हुक्मुहा कजा, अदारु फी नफसिहा। याद रखो ये दार का लफ्ज जो है अरबी में मुअन्नस सिमाई है, दार का लफ्ज क्या है अरबी में मुअन्नस सिमाई है। चुनांचे साहिब काफिया ने एक नजम लिखी है 20-22 अशआर पर मुश्तमिल है भाई, और उमूमन काफिया के नुस्खों के आखिर में दर्ज होती है, काफिया के नुस्खों के आखिर में बाज किताबों के अंदर वो आपको मिल जाएगी, और वो हर तालिब इलम को जुबानी याद होनी चाहिए। उसमें उन्होंने बहुत से ऐसे लफ्ज जिक्र किए हैं जो अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, बाज लफ्ज हैं वो अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं और बाज मुजक्कर और मुअन्नस दोनों तरह इस्तेमाल होते हैं। तो उन्होंने ऐसे बहुत से लफ्जों को उन अशआर में जमा किया है, और अशआर इंसान को आसानी से याद हो जाते हैं, तो वो हर तालिब इलम को याद होने चाहिए। उसमें उन्होंने इस दार को भी जिक्र किया है। साहिब काफिया फरमाते हैं व नफ्स सुम्मत दार सुम्मत दल व मिन आदादिहा व सिन वल कफानी, यानी उन लफ्जों में से नफ्स भी है, दार भी है, और दल वन भी है, मिन आदादिहा उसके शुमार में से, व सिन वल कफानी और दांत भी हैं, सिन दांत भी हैं, वल्का फानी और हथेलियां भी हैं दोनों भाई। तो दार मुअन्नस सिमाई है, और फी नफसिहा की हा जमीर इस दार को राजे है, दार मुअन्नस सिमाई है। देखो अरबी में कहते हैं अदारु फी नफसिहा हुक्मुहा कजा, हुक्मुहा से मुराद उसकी कीमत है या उसके समन है, कि घर जो है अदारु फी नफसिहा, घर अपनी जात के एतबार से, यह घर जो है अदार से क्या मुराद है खास घर, यह घर जो है या वो घर जो है फी नफसिहा अपनी जात के एतबार से हुक्मुहा कजा, उसकी कीमत इतनी है, उसकी कीमत इतनी है। भाई देखिए अरबी में यह फी एतबार के माना में और नजर के माना में इस्तेमाल होता है, अरब भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसकी मिसाल जिक्र कर दी अदारु फी नफसिहा हुक्मुहा कजा। चुनांचे आपके पास कोई मशवरा करने के लिए आया एक घर के बारे में, या आप घर फरोख्त कर रहे हैं, कोई घर आपसे खरीदने के लिए आया भाई, अल्लाह ताला आप सबको खूब वसी हलाल रिजक नसीब फरमाए। अब आपने उसको घर दिखाया और आपने उस घर की कीमत उसको बतलाई कि इतनी इतनी कीमत है, उसने कहा नहीं भाई इसकी कीमत कम करें, तो आप उसको कहते हैं अदारु फी नफसिहा, ये घर जो है अपनी जात के एतबार से, देखो एतबार वाला मैना मैं कर रहा हूं, ये घर जो है अपनी जात के एतबार से ये इतने का है, यानी अमरे खारिज को छोड़ो, ये किस महल्ले में है कि इस बात को भी छोड़ो, ये देखो देखो आप भी जानते हैं कि शहर के बाज हिस्सों के अंदर जमीन महंगी होगी और बाज हिस्सों में जमीन जितना शहर का दरमियान होगा या यहां जहां जितनी सहूलियात ज्यादा होंगी वो जमीन उतनी ही महंगी होगी भाई, और शहर के अतराफ और किनारे वो जितने दूर होते जाएंगे जमीन की कीमत भी कम होती जाएगी, मकानों की कीमत भी कम होती जाएगी। तो अब आप उसको बतलाते हैं अदारु फी नफसिहा, ये घर अपनी जात के एतबार से इसकी कीमत इतनी है, यानी जो मैंने आपको बतलाई है मैंने तो बड़ी कम कीमत बतलाई है, अपनी जात के एतबार से घर की इतनी कीमत है, यानी ये न देखो कि ये शहर के बीच में है या फलां ये किस महल्ले में है, ये सब चीजें छोड़ दो, सिर्फ इस घर की जात पे नजर करो, किस पर, कि ये एक कनाल का घर है मसलन, और इसकी बनावट आप देख लो, इस पे जो जो मटेरियल वगैरह लगा है उस मटेरियल के एतबार से इसकी कीमत इतनी बनती है, और बाकी ये जिस महल्ले में है उस एतबार से तो इसकी कीमत फिर कई गुना और ज्यादा बनती है। तो अद्दारु फी नफ्सिहा हुक्मुहा कजा, क्या माना कि अपनी जात के एतबार से घर की यह कीमत है, यानी इस घर के इसके जो मेटीरियल है बनावट वगैरह उसी के एतबार से मैं तो कीमत बतला रहा हूं, यानी किसी अमरे खारिज का मैं एतबार नहीं कर रहा। तवज्जो है, फी जाती ही इस घर पर जो मेटीरियल लगा है और ये एक कनाल की जमीन के अंदर बना हुआ है, इस एतबार से इसकी इतनी कीमत है। और अगर आप ये भी एतबार करें कि ये तो शहर के फलां खास बेहतरीन इलाके के अंदर है, या खास फलां महल्ले के अंदर है, या फलां फलां बड़े लोग इसके पड़ोस में रहते हैं, फिर तो इस घर की कीमत कितनी ही ज्यादा होगी, लेकिन मैं तो आपको ज्यादा नहीं बतला रहा। तो ये अरबी में ये जुमला कब कहते हैं, अद्दारु फी नफ्सिहा हुक्मुहा कज़ा, जब ये बतलाना मकसद हो कि एक चीज अपनी जात के एतबार से उसका हुक्म यह है, किसी अमरे खारिज के एतबार से नहीं। बात समझ में? तो यहां पर भी फी नफ्सिहा किस माना में आया, एतबार के माना में आया है। बात समझ में आ गई? का कौली का अद्दारु फी नफ्सिहा हुक्मुहा कजा, जैसे कि आपका यह कौल कि यह घर जो है फी नफ्सिहा अपनी जात के एतबार से हुक्मुहा कजा, इसका हुक्म यह है, यानी इसकी कीमत इतनी है। अला बेअतबारी अमरिन खारिजिन अनहा, यानी किसी अमरे खारिज के एतबार से नहीं, यानी किसी अमरे खारिज के एतबार से नहीं, घर की जात के एतबार से इसकी कीमत इतनी है, जो इस पर मटीरियल लगा है, जो बनावट है, उसके एतबार से इसकी यह कीमत है, बाकी किसी अमरे खारिज के एतबार से नहीं। अमरे खारिज का भी एतबार करें फिर तो कीमत कई गुना ज्यादा होगी। भाई बात समझ में आ गई? तो साहिब काफिया ने बतलाया कि यह फी बमाने एतबार के है, और कलाम अरब में भी फी बमाने एतबार के इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपके इस कौल के अंदर है अद्दारु फी नफ्सिहा हुक्मुहा कजा, यहां फी एतबार के माना में है, यहां फी एतबार के माना में है। अगर फी को एतबार के माना में न लें तो फिर तो अद्दारु फी नफ्सिहा, अद्दारु फी नफ्सी दार लाजिम आएगा, ज़र्फियतु शैली नफ्सी ही। तो ये कलाम अरब में फी बमाने एतबार के इस्तेमाल होता है। तो जैसे दार जो है मौजूद फिल खारिज है, खारिज में मौजूद है, उसका वजूद है, तो जैसे मौजूद खारिजी के अंदर कभी उमूर खारिजिया का एतबार किया जाता है, कभी एतबार नहीं किया जाता। जैसे दार था सिर्फ अपनी जात के एतबार से, मसलन अगर उसकी कीमत 1 करोड़ है तो शहर के खास इलाके में होने के एतबार से या खास महल्ले में होने के एतबार से हो सकता है उसकी कीमत 2 करोड़ हो या 4 करोड़ हो। भाई तो जैसे वो चीजें जो मौजूद फिल खारिज हैं उनमें कभी अमरे खारिजी का एतबार होता है, कभी अमरे खारिजी का एतबार, दार मौजूद फिल खारिज है उसमें कभी अमरे खारिज का एतबार होगा, कभी अमरे खारिज का एतबार नहीं होगा। इसी तरह माना जो है मौजूद फिल जहन है, तो मौजूद जहनी जो है उसके अंदर भी कभी अमरे खारिजी का एतबार होगा, कभी अमरे खारिजी का एतबार नहीं होगा। तो इब्तिदा लफ्ज इब्तिदा का माना वो अपनी जात के एतबार से साबित है, किसी अमरे खारिजी के एतबार से साबित नहीं है, जबकि हर्फ का माना जो है वो अपनी जात के एतबार से साबित नहीं होता, बल्कि अमरे खारिजी यानी मुताल्लकात के एतबार से साबित होता है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं का कौली का अद्दारु फी नफ्सिहा हुक्मुहा कजा, जैसे कि आपका यह कौल की घर जो है यह अपनी जात के एतबार से इसका हुक्म यह है। अला बेअतबारी अमरिन खारिजिन अनहा, यानी किसी अमर खारिज के एतबार से नहीं। वलिदालिका कीला, और इसीलिए कहा गया है अलहर्फ मा दल्ला अला मानन फी गैरिही। भाई फी नफ्सिही के अंदर आपको इन्होंने बतलाया, इधर देखिए साहिब काफिया ने क्या कहा, फी नफसी ही के अंदर यह हा जमीर किसको लौट आई, ईजाह के अंदर। तवज्जो है, ईजाह की इबारत चल रही है, ईजाह में फी नफसी ही की हा जमीर किसको लौट आई, माना को लौट आई, और फिर इस पर इश्काल हुआ कि फिर तो माना बन गया मानन फी नफसिल माना, माना किसकी जात में होगा, माना की जात में होगा। तो बतला दिया आगे कि यह फी जरफियत के लिए नहीं है, बल्कि यहां किस माना में है, एतबार के माना में है, और फी एतबार के माना में कलाम अरब में भी इस्तेमाल होता है। जैसे अरब कहते हैं अद्दारु फी नफ्सिहा हुक्मुहा कजा, तो फी नफ्सिही की पूरी तशरीह कर दी ईजाह में। अब जब फी नफ्सिही आपको समझ में आ गया कि फी नफ्सिही के अंदर यह फी किस माना में है, एतबार के माना में, तो अब आगे साहिब काफिया ईजाह के अंदर ही, वो ईजाह के अंदर ही आगे हर्फ की तारीफ भी जिक्र करते हैं। और हर्फ की क्या तारीफ की जाती है? अल हर्फ मा दल्ला अला मानन फी गैरिही, फी गैरिही। तो साहिब काफिया आपको बतलाएंगे कि पहले तो यह बतलाएंगे कि यह फी गैरिही, ये जैसे फी नफ्सी ही माना की सिफत था, इसी तरह फी गैरिही भी किसकी सिफत है? माना की सिफत है। तो अल हर्फ मा दल्ला अला मानन फी गैरिही ऐ हासिलिन फी गैरिही, यानी ये फी गैरिही माना की सिफत है। तवज्जो है। और फिर इसका माना क्या, इस इबारत का तर्जमा क्या होगा? मानन हासिलिन फी गैरिही, वो माना जो गैर में हासिल हो। मालूम हुआ मीन का अपना कोई माना नहीं होता, गैर में होता है माना। इसे तो यूं लगता है जैसे मीन क्या है कि जैसे हर्फ अपने माना से खाली होता है। इबारत पे नजर है मानन फी गैरिही कि हर्फ का माना किस में होता है? उसके गैर में होता है, दूसरी चीज में होता है, खुद हर्फ के अंदर नहीं होता। मालूम हुआ हर्फ तो माना से खाली है। तो उसको भी साहिब काफिया बतला रहे हैं कि भाई जैसे फी नफ्सी ही में फी एतबार के माना में था, इसी तरह फी गैरी ही के अंदर भी फी किस माना में है? एतबार के माना में है। तो क्या माना हुआ कि हर्फ वो कलिमा है जो दलालत करता है ऐसे माना पर जो उसके गैर के एतबार से होता है, और उसके गैर मुराद उसके मुताल्लकात हैं। कि हर्फ जो है वो दलालत करता है ऐसे माना पर जो उसके मुताल्लकात के एतबार से साबित होता है, खुद हर्फ के एतबार से साबित। तो फी गैरी ही, फी किस माना में? एतबार। और गैरी ही से कौन मुराद? मुताल्लकात हैं। गैर हर्फ से कौन मुराद हैं? उसके मुताल्लकात मुराद हैं। तो क्या तर्जमा क्या हुआ? हर्फ वो कलिमा है जो दलालत करता है ऐसे माना पर जो उसके गैर के एतबार से होता है, यानी उसके मुताल्लकात के एतबार से होता है। मुझे बताइए, सिर तो मिनल बसरा तीलल कूफा, मैं बसरा से चला कूफा तक, मिन ने किस माना पर दलालत की? शुरू करने पर। खुद दलालत की या अपने मुताल्लकात जो हैं, यानी सिरतू और बसरा के एतबार से अपने माना पर दलालत की? सिरतू और बसरा के एतबार से अपने माना पर दलालत की। यहां भी यही कह रहे हैं कि हर्फ दलालत करता है ऐसे माना पर फी गैरी ही जो उसके गैर के एतबार से होता है, यानी उसके मुताल्लक के एतबार से साबित होता है, खुद अपनी जात के एतबार से साबित नहीं होता। बात समझ में आ गई? तो देखिए किताब पर कहते हैं वली जालिका कीला, ये अभी इजाह की इबारत चल रही है, कहते हैं इसीलिए कहा गया है अल हर्फ मा दल्ला अला मानन फी गैरिही, हर्फ वो कलिमा है जो दलालत करता है ऐसे माना पर जो उसके गैर में होता है, उस कलिमा के गैर में होता है। हाज अमीर मा दल्ला को राजे, और मा दल्ला से कलिमा मुराद है। अल हर्फ मा दल्ला अला मानन फी गैरिही, हर्फ वो कलिमा है जो दलालत करता है ऐसे माना पर फी गैरिही जो उस कलिमा के अलावा में हो। भाई उस कलिमा के अलावा में क्या माना? कहते हैं ऐ हासिलिन फी गैरिही, बतला दिया कि ये फी गैरिही, ऐ हासिलिन फी गैरिही, इसके जरिए बतलाया कि ये फी गैरिही माना की सिफत है। ऐ मानन हासिलिन फी गैरिही, और आगे फिर बतलाएंगे ऐ बेअतबारी मुताअल्लक ही, बतला दिया कि ऐ हासिलिन फी गैरिही, इसमें फी किस माना में है? एतबार के माना में। और गैरिही से कौन मुराद है? फिर हर्फ के मुताल्लकात मुराद हैं। कहते हैं ऐ बेअतबारी मुताअल्लक ही, यानी वो माना जो उसके मुताल्लक के एतबार से साबित होता है, ला बेअतबारी ही फी नफ्सी ही, उस हर्फ की अपनी जात के एतबार से वो माना साबित नहीं होता। बात समझ में आ गई? इंतहा कलामुहू। जी, अल्लामा इब्ने हाजिब का ईजाह से जो कलाम हमने नकल किया वो खत्म हुआ। इंतहा कलामुहू, कलाम मुकम्मल हुआ। किसका कलाम? ईजाह से जो इब्ने हाजिब का कलाम नकल किया था। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे देखिए भाई, व महसूलुहु माजा करहु बाजुल मुहक्किकीन हैसु काला कमा अन्न फिल खारिजी मौजूदन काइमन बिजातिही व मौजूदन काइमन बिगैरिही कदालिक फिज ज़हन माकूलुन हुवा मुदरकुन कस्दन मलहूजन फी जातिही यस्लुहु अन युहकमा अलैहि व बिही। व माकूल हुआ मुद्रकुन तबाउ व आलतुन लि मुलाहजति गैर ही फलायसलुहली शई इमिनहा। आगे भाई महसूल और हासिल की बहस शुरू हो रही है, यानी हासिल महसूल की बहस शुरू हो रही है। याद रखो ये शरह जामी की मुश्किल तरीन बहस है भाई, बहुत मुश्किल और पेचीदा बहस, और मुदर्रिसीन इसको पढ़ाते हुए परेशान होते हैं, लेकिन उलमा को अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए, उन्होंने इस मकाम की खूब तशरीह की है जिससे यह मकाम हल हो जाता है भाई। तो बहरहाल ये शरह जामी के मुश्किल तरीन मकामात में से है। और मैंने बताया कि मेरे वालिद मोहतरम हजरत शेख तिर्मिजी हजरत मौलाना मोहम्मद मूसा रूहानी बाजी रहमहुल्लाह ताला रहमतं वासिया, उन्होंने भी इसकी बाकायदा एक इस हासिल महसूल की शरह लिखी है भाई। और ये जो हासिल महसूल की बहस है ये सिर्फ एक डेढ़ सफे पर मुश्तमिल है। ये कितनी है? एक डेढ़ सफे पर मुश्तमिल है, लेकिन इसकी शरह वाली साहब ने जो लिखी वो तकरीबन 500 सफहात पर मुश्तमिल है। तो अरबी जुबान में 500 सफहात पर मुश्तमिल इसकी शरह लिखी और इसको हल किया भाई। तो ये बड़ी पेचीदा बहस है भाई। सवाल पैदा होता है कि अल्लामा जामी रहमहुल्ला की यह आदत नहीं है कि वो इतनी लंबी बहस करें किसी चीज के बारे में। तो इतनी लंबी उन्होंने बहस की, इतनी मुश्किल बहस की, हालांकि ये उनकी आदत नहीं है। तो क्या वजह हुई इनको कि उनको इतनी मुश्किल और पेचीदा बहस करना पड़ी? तो उसकी कई वजूहात हैं भाई, कई वजूहात। एक तो ये, तवज्जो से सुनो, एक वजह ये कि इस्म की तारीफ में आया था फी नफसी ही, तो माना का फी नफसी ही होना क्या मतलब भाई? माना का फी नफसी ही होना क्या मतलब? और इसी तरह हर्फ की तारीफ में आया मानन फी गैरिहा, कि वो माना किस में होता है? गैर में होता है। तो माना का फी नफसी ही होना और माना का फी गैरी ही होना, इसका क्या मतलब है? तो शारह जामी उसकी तफसील बयान करना चाहते हैं, पूरी वजाहत करना चाहते हैं कि माना फी नफसी ही का क्या माना और माना फी गैरी ही का क्या माना है, उसकी तफसील बयान करना चाहते हैं। एक वजह यह, इसलिए वह हासिल महसूल की यह बहस लेकर आए भाई। दूसरी वजह यह कि इस बहस के जरिए वो दरअसल बाज़ उलमा का रद्द करना चाहते हैं। बाज़ उलमा जैसे अल्लामा तफ्ताज़ानी वगैरह, वो फरमाते हैं कि जैसे इसम और फेल वो अपने माना पर दलालत करते हैं, यानी इसम और फेल का माना फी नफ्सी ही होता है, इसी तरह हर्फ का माना भी फी नफ्सी ही होता है। तवज्जो है, बाज़ उलमा क्या फरमाते हैं कि जैसे इसम का माना फी नफ्सी ही होता है, यानी उसकी अपनी जात में होता है, इसी तरह हर्फ का माना भी उसकी अपनी जात में होता है। तो शारह जामी उनको रद्द करना चाहते हैं और उनको बतलाना चाहते हैं कि नहीं भाई, एक है इसम एक है हर्फ, दोनों के माना में भी फर्क है, दोनों के लफ्जों में भी फर्क है, दोनों के हुक्म में भी फर्क है, दोनों के इस्तेमाल में भी फर्क है और दोनों की वजह में भी फर्क है। तो पांच फर्क वो जिक्र करते हैं भाई। पहली वजह क्या, ये हासिल महसूल की बहस क्यों लाए? क्योंकि इसम और फेल की तारीफ में फी नफसी ही आया था और फेल की तारीफ में भी फी नफसी ही आया, जबकि हर्फ की तारीफ में फी गैरी ही आया, तो इसकी वो वजाहत करना चाहते हैं। और दूसरा ये कि बाज़ उलमा को जवाब देना चाहते हैं जो क्या फरमाते थे कि इसम और फेल की तरह हर्फ का माना भी फी नफसी ही होता है, तो उसका भी जवाब देते हैं कि नहीं भाई, दोनों के माना में भी फर्क, लफज में भी फर्क, हुक्म में भी फर्क, इस्तेमाल में भी फर्क और वजा में भी फर्क। दोनों के माना भी फर्क है भाई, इसम का माना और एक है हर्फ का माना। इसम का माना मुस्तकिल बिल मफहूम होता है, मुस्तकिलन समझ में आता है लफ्ज से, और हर्फ का माना मुस्तकिल बिल मफहूम नहीं होता, वो मुस्तकिलन समझ में नहीं आता। तो दोनों के माना में भी फर्क, दोनों के लफ्जों में भी फर्क है भाई। इसम अपने माना पर खुद दलालत करता है, किसी कलिमे के जुड़ने का मोहताज नहीं, जबकि हर्फ अपने माना पर खुद दलालत नहीं करता, वो हर्फ जो है वो और लफ्जों का मोहताज है भाई कि वो इसके साथ जुड़ेंगे तो फिर इसका माना समझ में आएगा। और नीज हुक्म में भी फर्क है। इसम जो है, इसम वो महकूमुन अलै भी बन सकता है और महकूमुन बिही यानी मुस्नद इलै भी बन सकता है और मुस्नद बिही भी बन सकता है, जबकि हर्फ का हुक्म और है, वो ना मुस्नद इलै बन सकता है ना मुस्नद बिही, यानी ना महकूमुन अलै बन सकता है और ना महकूमुन बिही बन सकता है। तो हुक्म में भी फर्क है भाई, और नीस इस्तेमाल में भी फर्क है। इसम जो है किसी को कोई माना समझाना हो या समझना हो तो इसम को किसी दूसरे लफ्ज के साथ इस्तेमाल करना जरूरी नहीं। जैसे मसलन मैं आपको इब्तिदा का माना बतलाना चाहता हूं, तो इब्तिदा का माना जब मैं बतलाना चाहता हूं तो लफ्ज इब्तिदा से ही यह माना आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर इसके साथ किसी और लफ्ज को जोड़ने की जरूरत नहीं है भाई, जबकि हर्फ का माना समझाने के लिए उसके साथ और लफ्जों को जोड़ना पड़ेगा भाई। यूं को हर्फ हमेशा अपने मुताल्लकात के साथ इस्तेमाल होगा और इसम का अपने मुताल्लकात के साथ इस्तेमाल होना जरूरी नहीं, उसके बगैर भी उसका माना समझ में आ जाएगा। और दोनों में वजा के एतबार से भी फर्क है भाई, वजा के एतबार से भी आगे चलकर साहिब जामी आपको बतलाएंगे कि इसम जो है उसको माने कुल्ली के लिए वजा किया गया है और हर्फ जो है उसको माने जुजी के लिए वजा किया गया है। और तीसरी वजह कि साहिब जामी ये बहस क्यों लेकर आए, तीसरी वजह यह कि दरअसल इसम की तारीफ बहुत मुश्किल है भाई। तो इसम की ऐसी तारीफ करना जो जामे मान्या हो और हर किस्म के एतराजात से सलामत हो, ऐसी तारीफ करना बहुत मुश्किल है भाई। चुनांचे इमाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्ला फरमाते हैं कि इसम की मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन ने 70 के लगभग तारीफें की हैं और उनमें से एक भी तारीफ एतराजात से खाली नहीं, हर एक पर बड़े बड़े एतराजात होते हैं। बात समझ में आ गई। इसी तरह अल्लामा इब्नुल अंबारी रहमहुल्ला वो भी फरमाते हैं कि इसम की कोई तारीफ भी एतराजात से खाली नहीं, इसम की हर तारीफ पर एतराज होता है। इसी तरह इमाम राजी रहमहुल्ला ने अपनी तफसीर कबीर में इसम की बहुत सी तारीफें जिक्र की हैं और लेकिन फरमाया है कि इसम की कोई तारीफ सही नहीं, और इसम की तारीफ पर भी और इसी तरह हर्फ की तारीफ पर भी बड़े बड़े मुश्किल एतराजात उन्होंने जिक्र किए हैं भाई। तो ये तो नहवियों पर बहुत बड़ा ऐब उनके लिए बनता है, बहुत बड़ा एतराज बनता है कि इल्म नहव में सबसे ज्यादा बहसें इसम की हैं और ए नहवियों आपको इसम की जामे मानने और एतराजात से महफूज और सालिम कोई तारीफ भी नहीं आती। चुनांचे उलमा फरमाते हैं कि इमाम सीबवे जो हैं वो भी इसम की तारीफ नहीं जानते थे भाई। चुनांचे उनकी किताब है किताब सीबवे भाई, इल्म नहव की मुश्किल तरीन किताबों में से है। इमाम सीबवे वो हैं कि तकरीबन बास फरमाते हैं 32 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ है और बास फरमाते हैं 40 साल की उम्र में, गोया तकरीबन जवानी ही में दुनिया से चले गए, लेकिन इल्म नह में उनकी बात पहाड़ की तरह मजबूत समझी जाती है। तो ये इतनी जल्दी दुनिया से चले गए और ऐसी किताब लिख गए, अगर ये और जिंदा रहते तो उनके उलूम का क्या हाल होता हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह बाज लोगों को अजीब जहन नसीब फरमाते हैं, इंसान हैरान रह जाता है। तो नह की मुश्किल तरीन किताबों में से है उनकी किताब भाई, और कहते हैं इमाम सीबवे भी इसम की तारीफ नहीं जानते थे। चुनांचे वो अपनी किताब में फेल की भी तारीफ करते हैं, हर्फ की भी तारीफ करते हैं, लेकिन इसम की तारीफ उन्होंने नहीं की। ये लेकिन ये कोई ऐब वाली बात नहीं, एतराज वाली बात नहीं। वजह यह कि बाज औकात कोई चीज इतनी वाजह इतनी नुमाया होती है कि समझ में तो आती है लेकिन उसकी तारीफ करना बड़ा मुश्किल होता है। उसको जानता तो हर एक है लेकिन उसकी तारीफ करना बड़ी मुश्किल बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे देखो सूरज सबसे ज्यादा रोशन और नुमाया ऐन दोपहर के वक्त होता है और उस वक्त कोई नजर उसकी तरफ नहीं देख सकती भाई, जितनी चीज नुमाया और जाहिर है इतना ही उसको देखना मुश्किल हो जाता है। सूरज अब ऐन दोपहर को देखो सबसे ज्यादा रोशन और चमकदार ऐन दोपहर के वक्त होता है और उस वक्त कोई नजर उसकी तरफ नहीं देख सकती भाई। इसी तरह नूर रोशनी, रोशनी किसे कहते हैं, बच्चा बच्चा भी जानता है, लेकिन रोशनी की तारीफ क्या करें, रोशनी की तारीफ बे इंतहा मुश्किल है भाई। उलमा उसकी हकीकत में परेशान है कि रोशनी किस चीज का नाम है भाई, और है आम चीज, बच्चा बच्चा भी रोशनी को जानता है, लेकिन तारीफ करना जामे माने यह बड़ा मुश्किल काम है। इसी तरह सुरूर, खुशी, बच्चा बच्चा जानता है खुशी किसे कहते हैं, लेकिन खुशी की तारीफ करना, खुशी की हकीकत क्या है, बहुत मुश्किल काम है। उलमा उसकी तारीफ में परेशान है भाई। बात समझ में आ गई? तो इसम चूंकि बहुत नुमाया, बहुत वाजे है, लिहाजा इसीलिए इसकी तारीफ भी बड़ी मुश्किल है भाई। चुनांचे मैंने बताया इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं 70 तारीफें जिक्र की और फरमाया कि इनमें से एक भी एतराजात से खाली नहीं, एक भी जामे माने नहीं। इसी तरह अल्लामा इब्नुल अंबारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इसी तरह इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ने बड़े एतराजात किए, बड़े कवि कवि एतराजात इसम और हर्फ की तारीफ पर। बात समझ में आ गई? तो साहिब जामी अब उसकी वजाहत करना चाहते हैं, इस तारीफ की वजाहत करना चाहते हैं। याद रखो इसम की ये जो तारीफ की अल्लामा इब्ने हाजिब ने काफिया में, अल इस्मु मा दल्ला अला मानन फी नफ्सिही गैर मुक्तरिनिन बि अहदिल अज़मिनति सलासा, ये माखूज है मुफस्सल से, किससे माखूज है, तो और तो दोनों एक ही जैसी गोया तारीफें हैं भाई, लफ्जों का थोड़ा फर्क है लेकिन तारीफें एक जैसी हैं। तो इस तारीफ पर भी बहुत से इश्कालात होते हैं। तो सबसे पहले मीर सैयदुस्सनद, मीर सैयद जिनको मीर सैयद अशरीफ भी कहते हैं, नहमीर वाले भाई, नहमीर आपने किताब पढ़ी है, इसके जो मुसन्निफ हैं मीर सैयदुस्सनद या ये मीर सैयदुशरीफ के नाम से भी मशहूर हैं, इन्होंने इसम की तारीफ की वजाहत की कोशिश की, इसम और फेल की तारीफ की वजाहत की फलसफी उसूलों की रोशनी में, फलसफी उसूलों की रोशनी में। और फिर उसके बाद अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ने उसकी मजीद वजाहत की नहवी उसूलों की रोशनी में। वही जो बहसें किसने की थी, मीर सैयदुस्सनद ने, उनको नहवी उसूलों के और मुताबिक बना दिया और उसकी वजाहत कर दी और तमाम एतराजात जो थे वो खत्म कर दिए। ये जो काफिया और ये मुफस्सल की तारीफ है, ये इसम की सबसे जबरदस्त तारीफ है भाई। और इस पर जो इश्कालात होते थे, जो इमाम राजी रहमतुल्लाह ने बड़े बड़े मुश्किल पेचीदा एतराजात किए, तो मीर सैयदुस्सनद ने उन एतराजात का जवाब दिया, उसको हल करने की कोशिश की, और फिर साहिब जामी ने उसको कमाल तक पहुंचा दिया। तो इन दोनों ने साबित कर दिया, मीर सैयदुस्सनद और अल्लामा जामी ने, कि ये इसम की तारीफ जामिअ और मानिअ है और इस पर कोई एतराज वारिद नहीं होता, तमाम एतराजात के जवाब दे दिए भाई। बात समझ में आ गई? तो गोया मीर सैयदुस्सनद और अल्लामा जामी का नहवियों पर बहुत बड़ा एहसान है कि इन्होंने ऐसी तकरीर की कि जिससे पता चल गया कि इसम फेल और हर्फ सब की ये तारीफें जामिअ मानिअ भी हैं और एतराजात से सालिम भी हैं भाई। तो ये हासिल महसूल की बहस के जरिए वो बतलाते हैं कि इसम और फेल की तारीफ जामिअ और मानिअ है और एतराजात से सलामत है भाई। बात समझ में आ गई? चलिए बस करें भाई, बस भाई। हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।